ओम शांति। हम सबके बीच आदरणीय ममताबेन जी उपस्थित हैं। हम सभी करतल ध्वनि से आपका स्वागत करेंगे। आप 35 वर्ष से बाबा के ज्ञान में हैं और 32 वर्षों से समर्पित रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय आप मंडला सेवा केंद्र पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आप यूथ विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है। ऐसी विशेषता की धनी बहन जी से आज हम सुनने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है ज्वालामुखी योग और तीव्र पुरुषार्थ क्या है। ज्वालामुखी योग और तीव्र पुरुषार्थ पर आज बहन जी प्रकाश डालें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी प्यारे बाबा की याद में कहो आत्मिक उन्नति के लिए कहो आत्मिक स्थिति में बैठ अपने आत्मिक पिता प्यारे श्री बाबा को याद कर रहे थे। ये संगम युग की हम ब्राह्मणों के लिए सुहावनी घड़ी है। इस संगम युग में ही हम आत्माओं को आत्मिक उन्नति की समझ जब से मिली, आत्मिक ज्ञान मिला, तब से हम सभी ब्राह्मण आत्माओं के दिल व जिगर में यही भावना रहती है कि ज्ञान में तो हम हैं लेकिन हमारी उन्नति सदैव होती रहे। हमारी चढ़ती कला हो, वर्तमान समय तो और उड़ती कला में जाने का समय है क्योंकि अंतिम पड़ाव चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है। तो हमारी स्थिति कैसी ज्वालामुखी, कैसी तीव्रता वाले पुरुषार्थ की होनी चाहिए, उस पर बाबा हम बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं। और हम सभी ब्राह्मण आत्माएं भी यही चाहते हैं। हमारी सबसे प्रिय चीज हमारी अपनी स्व स्थिति है, अवस्था है। कितनी भी परिस्थिति विघ्न बाधाएं आए लेकिन हम ब्राह्मणों की प्रिय चीज स्व स्थिति अवस्था सदैव अचल अडोल एक रस बनी रहे। माया भी बहुरूपी है, किसी भी रूप से वो क्यों ना आ जाए, विघ्न बाधाओं के रूप में, परिस्थितियों के रूप में, व्यक्ति के रूप में, कोई बात के रूप में, लेकिन वो हमें हिला न सके, हमारी अवस्था को डगमग कर न सके। इसलिए अंगद का मिसाल हम सभी जानते हैं कि अंगद के पांव को कोई हिला नहीं सका था। कौन है वो अंगद? हम ही इस रावण की मायावी दुनिया में बैठे हैं, हमें कोई हिला सकता है क्या? नहीं। हम अचल अडोल ऐसी आत्माएं हैं जो हमें कोई भी माया की शक्ति हिला नहीं सकती, डगमग नहीं कर सकती है। तो इतना अपनी स्व स्थिति, अपनी अवस्था को हमें बनाए रखना है क्योंकि हमारी प्रिय चीज ही यही है। ब्राह्मण आत्माएं अवस्था को संभालकर पुरुषार्थ में हम अपनी तीव्रता ला सकते हैं। नहीं तो कहेंगे हाँ पुरुषार्थी हैं, अभी देखेंगे कौन संपूर्ण बना है, ऐसे नकारात्मक विचार नहीं आने देने। लेकिन अपनी स्थिति को संभालते हुए
पुरुषार्थ में तीव्रता लाते हुए आगे आगे बढ़ते जाना है। न रुकना है, न ठहरना है, न पीछे मुड़कर देखना है, सदैव आगे आगे बढ़ते जाना है। न गिरना है, न संभालने की जरूरत पड़ेगी। संभल करके हमें ऐसे चलना है कि सदैव आगे आगे हम बढ़ते रहें, क्योंकि प्यारे बाबा ने हमें वो सत्यता की शक्ति, वो पवित्रता की शक्ति, वो निस्वार्थ सच्चे प्यार की शक्ति से हमें पाला है। और वो परमात्मा प्यार की जो हमने अनुभूति की, जो पालना ली, जो शक्ति प्राप्त की, उससे और भी अनेक शक्तियों को हमने अपने जीवन में बढ़ा। बाबा की प्यार की पालना ने ही हमें इस दुनिया में सहनशील बनाया। सहन शक्ति के आधार से जो भी दुनिया में आज तक महान बने हैं, सहन करके ही बने हैं। सहनशीलता का गुण वो भी प्यार से ही हमारे अंदर आया। सहनशीलता से फिर शीतलता का प्रादुर्भाव होता, जो शीतलता हमारी बुद्धि में रखी हुई फ्रिज के समान है, जो हमारे ज्ञान को तरोताजा सुरक्षित रखती है। तो बाबा, ड्रामा और स्वधर्म, ये तीनों हमारे अंग संग के साथी हैं। जितना हम बाबा के प्यार की पालना की अनुभूति करते हैं, जितना हम बाबा को हर संबंधी बनाकर हर संबंध के प्यार का अनुभव करते हैं, मीरा के समान मेरा तो एक दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का करके चलते हैं, तो चाहे कितनी भी विघ्न आए, बाधाएं, परिस्थितियां, समस्याएं, बीमारियां जो भी आ जाएं, हम क्या कहते हैं, ड्रामा। बाबा ने इतना अच्छा हमें ड्रामा रूपी ब्रेक दिया है ना? साइकिल में, वाहन में ब्रेक होता है ना, वो सिर्फ हाथ में रहता है ना, पर यूज कब करते हैं उसको, जब एक्सीडेंट या कुछ ऐसा समय आता तब उसको ब्रेक को दबा देते हैं। अगर पहले ही ब्रेक दबा देंगे तो क्या होगा, गाड़ी चलेगी, आगे बढ़ेगी नहीं। तो हमें आगे आगे बढ़ना है, तीव्रता वाला पुरुषार्थ करना है, परंतु ड्रामा रूपी ब्रेक को हाथ में रखना है। कोई ऐसी घटना घट जाए, कोई कर्म बंधन आ जाए, कोई बीमारी, कर्म भोग आ जाए, कुछ भी आ जाए, ड्रामा, ब्रेक लगा दिया और फुल स्टॉप लगाकर फिर आगे बढ़ते रहे। ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है, पीछे नहीं देखना है, आगे 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 तीव्रता वाला पुरुषार्थ करके दूसरों के लिए हमें प्रेरणा स्रोत बनना है। तो ड्रामा का ब्रेक और अपने स्वधर्म में हमें स्थित रहना है। आज परम प्यारे बाप दादा, छत्र छाया के समान हमारी प्यारी मीठी दादियां, वो हम बच्चों के अंदर कितना उमंग, उत्साह, फकूर, वो नशा देकर के हमें उड़ा देती है, हमारे पुरुषार्थ में और तीव्रता के पंख लगा देती है, वो हमारे आगे प्रेरणा स्रोत हैं। और जब खुशी आ जाती है, वो फकूर आ जाता है, वो नशा चढ़ जाता है, तो फिर क्या होता है, पुरुषार्थ में और तीव्रता आती जाती है। खुशी, उमंग, उत्साह ही हमें पुरुषार्थ में आगे बढ़ाता है। आज हम देखते हैं हमारी दादियों को कितना वो ड्रामा, बाबा, स्वधर्म तीनों के साथ रहती हैं, स्वधर्म में स्थित शांत स्वरूप स्थिति दादियों की हमें भी आकर्षित करती है। उनका संग, उनका प्यार, उनकी पालना हम सभी आकर मधुबन में महसूस करते हैं। ऐसा संगम युग में हम आत्माओं का, हम बच्चों का भाग्य है जो इस बेहद की भूमि पर हम पांव रख सके। ये भी हमारा सौभाग्य है। इतना बड़ा बेहद का बाप मिला, बेहद का परिवार हमें मिला, बेहद का निस्वार्थ प्यार जो हमें आगे बढ़ाता, उमंग खुशी दिलाता, उससे हम अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बाबा के बच्चे पुरुषार्थ तो सब करते हैं। सत्यता की शक्ति के जो बाबा ने हमें दी है, श्रेष्ठ संकल्प, दृढ़ता की शक्ति के संकल्प, इन सब को लेकर के साथ हम महान बनते जाते हैं, पावन बनते जाते हैं। तो बाबा जैसी ना कोई पवित्रता हमें दे सकता, ना सत्यता दे सकता, ना कोई इतना प्यार दे सकता। तो हम बच्चे कितने ना भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली कहें। महाभारत में प्रसंग आता है, सुना होगा आप लोगों ने सभी ने, कि जब पहला पाठ द्रोणाचार्य गुरु के द्वारा सभी पांडवों को, कौरवों को पढ़ाया जाता था, तो पहला पाठ पढ़ाया था सत्यम वद धर्मम चर, ये पाठ पहला पढ़ाया गया था। फिर पहला पाठ पढ़ाने के बाद जब दूसरे दिन उनसे पूछा गया कि भई याद करके इस पाठ को आना, तो सभी ने सुना दिया, लेकिन जो युधिष्ठिर थे उन्होंने पाठ नहीं सुनाया, दो दिन तक नहीं सुनाया। फिर उनकी निगाह गई कि अरे इन्होंने कैसे नहीं सुनाया, तो पूछा गया, बोले पाठ, तो बोले पाठ तो मुझे याद था। फिर याद था तो सुनाया क्यों नहीं? क्योंकि उस पाठ को जीवन में पक्का नहीं किया था। जीवन में पक्का नहीं किया तो सुनाएं कैसे, है ना? फिर उन्होंने अपने जीवन में सत्यता से चलने की, सच बोलने की दृढ़ प्रतिज्ञा ली, तब तो वो धर्मराज युधिष्ठिर कहलाए। तो पांडव अर्थात जो परमात्मा से प्रीत बुद्धि, तो हम सब यहां कौन बैठे हैं? सभी प्रीत बुद्धि पांडव है ना। युधिष्ठिर अर्थात युद्ध में स्थिर रहने वाले। तो अभी वर्तमान समय माया के साथ हमारी युद्ध चल रही है ना, अंदर ही अंदर। तो जो बाबा के पक्के बच्चे हैं वो बाबा की तरफ आ जाते हैं। सच बाप को, सत्यता को अपनाते हुए, सत्यता की ओर आगे बढ़ते हुए, सत्यता की शक्ति को अपने अंदर लाते हुए और आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि कहा जाता है सच्चे दिल पर साहेब राजी। बाबा को राजी करने के लिए, बाबा से शक्ति लेकर बाप समान बनने के लिए सच्चाई का गुण भी बहुत जरूरी है, जो हमें सतयुग में ले जाता है। झूठ बोलने वाला सतयुग में कैसे जाएगा? हमें तो सतयुग में जाना है ना, सच्चे युग में। तो वो सच्चाई का पाठ बाबा ने हमें पढ़ाया, वो शक्ति दी, वो पावर दी। तो इसलिए हम अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाना तो चाहते हैं, पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन अपना विजन बनाकर आगे नहीं बढ़ते। कंफ्यूज होकर के हम चलते रहते हैं, लेकिन अगर अपना कुछ विजन बना लें, अगर हमें फॉलो करना है, तो हमारे सामने आदर्श, हमारे सामने प्रेरणा स्रोत, सैंपल हमारी मीठी दादियां हैं। और बाबा ने हम बच्चों को वो पावर दी है, वो शक्ति दी है, तो उस अनुसार हम अपना विजन, अपना लक्ष्य रख करके और फिर आगे पुरुषार्थ करें। तो बाबा ने जो चार सब्जेक्ट बताए हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, तो तीव्रता वाला पुरुषार्थ माना, चारों ही सब्जेक्ट में तीव्रता लानी पड़ेगी ना, पुरुषार्थ माना टोटल पुरुषार्थ, तीव्रता लानी है माना टोटल सब्जेक्ट में लानी है ना, क्योंकि यहां तो फुल पास या फुल ना पास होते हैं, सप्लीमेंट्री की तो यहां कोई बात ही नहीं है ना, तो फुल पास होना है, संपूर्ण बनना है, बाप समान संपन्न और संपूर्णता को प्राप्त करना है, तो फुल हमें तीव्रता वाला पुरुषार्थ चाहिए, हर सब्जेक्ट में, हर बाबा की श्रीमत अनुसार, हर बाबा की आज्ञा अनुसार हमें चलना है। जैसे ज्ञान है, ज्ञान माना जो बाबा आकर, जो भगवान आकर परम धाम से हम बच्चों को रोज रोज पढ़ाते हैं, किसको पढ़ाते हैं, मेरे को कि सबको, हर एक ये सोचता है मेरे को बाबा पढ़ाने आए हैं, मेरे लिए बाबा परम धाम से मुझे पढ़ाने के लिए आए हैं, तो उतना अटेंशन रहेगा, पुरुषार्थ तीव्रता वाला हो जाएगा। अगर हमने ये सोचा बाबा सबको पढ़ाने आए हैं, आज मैं नहीं भी गया क्लास में तो क्या हुआ, तो क्या होगा, पुरुषार्थ तो होगा लेकिन उसमें तीव्रता नहीं आएगी। तीव्र पुरुषार्थ, पुरुषार्थ में तीव्रता आए उसके लिए, अटेंशन लाने के लिए, जब हम ये सोचेंगे कि बाबा मुझे पढ़ाने के लिए दूर से आते हैं, तो मुझे कैसे जाना पड़ेगा, टाइम पर जाना पड़ेगा ना, मुझे ही तो पढ़ाने आते हैं बाबा, तो बाबा के आने के पहले, बाबा के आवाहन में हम बैठ जाएंगे, जल्दी पहुंचेंगे, नहीं तो बाबा किसको पढ़ाएगा। तो मुझे नंबर वन स्टूडेंट बनना है। तो ज्ञान में तीव्रता, ज्ञान माना समझ, जितना हम समझदारी से चलते हैं, ज्ञान को समझ के चलते हैं, बाबा की बताई हुई श्रीमत आज्ञा को पालन करके चलते हैं, अमृत वेले से लेकर रात तक बाबा ने हमें पूरी समझ दी है, शिक्षा दी है, उस अनुसार हमें पूरा दिन निकालना है। अब कई बाबा के ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बचे हैं जो यहां आकर मधुबन में, मधुबन वाले बाबा के साथ प्यार में खोकर अनुभूति ऐसी करते हैं, जो साथ में अपने वो शक्ति व अनुभव लेके जाते हैं, वो ही अवस्था अपने स्थान पर जाकर के भी रखते हैं, माना वहां भी वो ही अमृत वेले से पूरी रात तक की दिनचर्या मधुबन के अनुसार ही चलती है। जो मधुबन की दिनचर्या उस अनुसार कोशिश करते हैं, अमृत वेले उठ करके रात तक हम उसी ही दिनचर्या में चलें, तो हम भी मधुबन निवासी हो गए, है ना? मधुबन निवासी अर्थात सदैव मधुबन की दिनचर्या अनुसार हम चलें। तो यह समझदारी से चलना, ज्ञान बाबा की बताई हुई श्रीमत के अनुसार पूरा चलना, ज्ञान को मनन चिंतन करके अपना बनाना, जैसे कहते ना अपनी घोट तो नशा चढ़े, ज्ञान तो बाबा ने दिया लेकिन उसको मनन चिंतन विचार सागर मंथन करके अपना बनाना। जब बाबा साकार में थे तब से लेकर बाबा ने सिखाया है, मुरली सुनी, मुरली सुनने के बाद और आज भी हम देखते हैं दादियों को मंथन करती हैं, मुरली सुन करके फिर पूरे दिन के लिए फ्री, कभी मुरली को कई हाथ भी नहीं लगाते, सुबह मुरली सुन ली थी हमने, शाम को कभी हम योग करने जाते हैं, कभी हमको बैठना पड़ता है तो भी मुरली चलती रहेगी तो नहीं बैठेंगे, हमने सुबह सुन ली। लेकिन हमारी दादियों को देखो, तीन बार चार बार मुरली बार बार पड़ती है, तो कितना मुरली से जिगर प्यार। और हमेशा दादी जानकी क्या बोलती हैं, मुरली को जिसको बार 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 रिपीट करने की आदत होगी तो वो व्यर्थ बातों की रिपीटेशन कभी नहीं करेंगे, क्योंकि मुरली रिपीटेशन करने की आदत।
तो बाबा ने मुरली सुनाई,
हमने सुनी भी, लेकिन समाएगी कब? जब अपनी घोट तो नशा चढ़े, जब हम जितना उसके ऊपर मंथन करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, पॉइंट में पॉइंट निकालते 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 खुद पॉइंट बन जाएंगे, स्वरूप में ले आएंगे। इसलिए कहते हैं ना, ज्ञानी तो बन गए, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। आनंद की एक बार हमने आज आनंद परमानंद का योग में अनुभव कर लिया, लेकिन आनंद स्वरूप कहां बने? शक्ति तो महसूस की, शक्ति स्वरूप कहां बने? अगर वो स्वरूप हमारा बन जाएगा तो वो दूसरों को प्रेरणा देने के लायक बनेगा, हम उनको भी वैसा बना सकेंगे। तो अपने स्वरूप में लाना है, शांति की अनुभूति करके शांत स्वरूप बनना है। तो इस ज्ञान को जितना हम मंथन करें, तो अपना विजन बनाएं, अपना लक्ष्य बनाएं कि ज्ञान में, ज्ञान के सब्जेक्ट में मैं अपने पुरुषार्थ में किस रीति से तीव्रता लाऊं, क्या करूं। नंबर वन स्टूडेंट बनूं जो टीचर की निगाह मेरे ही ऊपर पहले पड़े, ऐसी दृष्टि पड़े, ऐसी नजर पड़े जो मैं निहाल हो जाऊं, जो इतने समय से गाते आए कि सतगुरु की कृपा दृष्टि होगी तो निहाल हो जाएंगे। कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग पड़ा जब सतगुरु मिला दलाल। वो सतगुरु जब हमें मिलता, उसकी कृपा दृष्टि जब हमें मिलती, ऐसा सुंदर मेला जब हमें मिल रहा है, तो उसकी कृपा दृष्टि से हम निहाल हो जाएं। नजर से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु, कहते आए ना। तो वो टीचर तो है ही हमें पढ़ाने वाला, टीचर पढ़ाता, परीक्षा देने लायक बनाता, क्लास आगे बढ़वाता, गुरु ऐसी कृपा करता, ऐसा आशीर्वाद देता, ऐसा भरपूर कर देता कि सदगति कर देता। वो गुरु तो आधे में छोड़कर चले जाते, और ये सदगुरु साथ ले जाते, सदगति कर देता। तो इस ज्ञान में हमें बाप भी मिला, टीचर भी मिला, गुरु भी मिला, सतगुरु मिला, सर्व संबंधी के रूप में सब कुछ मिला, सर्व प्यार मिला, सारे ज्ञान का सत मिला, समझ मिली। तो उसके अंदर हम तीव्रता लाते हुए आगे बढ़े, उसे कहेंगे ज्ञान की सब्जेक्ट में हमने अपना ये लक्ष्य बनाया है, हमें किसी को नहीं देखना है, हमारे बाबा मम्मा, हमारी आदरणीय दादियां जिन्हें हमें फॉलो करते हुए और आगे पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है। अंतर हमारा हर सब्जेक्ट में समाप्त हो जाए, हम बाप समान बनते जाए। ज्ञान का पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने भी कितना किया, एक आत्मा शब्द के ऊपर बाबा कितनी मेहनत करते थे। मैं आत्माओं से यशोदा आत्माएं, ये आत्माएं बिंदी 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 बाबा लगाकर पुरुषार्थ करते थे, मैं आत्मा, ये आत्मा, वो आत्मा। जब बाबा ने इतना पुरुषार्थ किया, मम्मा ने किया, करके दिखाया हम बच्चों को प्रैक्टिकल, तो हमें भी वैसा करना है। उसके बाद योग का सब्जेक्ट, योग के लिए हमें क्या करना है, क्या तीव्रता लानी है। बाबा हमें सभी बताते हैं कि योग हमारा कम से कम 8 घंटे का होना चाहिए, लेकिन बाबा का अटेंशन है निरंतर योगी, उसमें भी अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे ज्ञान सागर के हम बच्चे हैं तो हम मास्टर ज्ञान सागर कहलाएं, ऐसे हम योगी बच्चे हैं तो योग माना जुड़े ही रहें। आज कोई नया ज्ञान सुनने के लिए आता है तो हम उनको क्या कहते हैं, हम बताते हैं कि कैसे ये दुखी और अशांत परिवार जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ज्ञान योग की शिक्षा लेने के लिए आते हैं, उनका कैसे बुद्धि का तार परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, जुड़ा रहने के कारण उनका दुखी अशांत परिवार सुख शांति वाला बन जाता है। दिखाते हैं ना प्रदर्शनी में। तो कैसे बना? बुद्धि की तार जुड़ने से टेंशन समाप्त हो गए, समस्याएं खत्म हो गई। ऐसा नहीं है, टेंशन भी आए, समस्याएं भी आती, परिस्थितियां भी आती हैं, लेकिन आती हैं और चली जाती हैं। पानी पर लकीर, तत्ते तवे पर पानी डालो तो क्या होगा, उड़ जाएगा। तो आई परिस्थिति गई, आई है तो जाएगी भी ना। कोई मेहमान आया है तो जाएगा भी तो सही। खुशी तो हमारी अपनी चीज है ना, अपना खजाना है ना, अपनी प्राप्ति है ना, अपनी चीज है ना। लेकिन परिस्थिति क्या है, विघ्न क्या है, बाधाएं क्या है, समस्याएं क्या है, सामने से बाहर से आई हुई चीज है ना। मेहमान बनकर आई है, मेरी परीक्षा लेने आई है, मुझे अनुभवी बनाने आई है, मुझे आगे बढ़ाने आई है, वो चली जाएगी, मैं डिस्टर्ब क्यों हूं, तो क्या होगा? एकदम पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी, कहीं रुकना नहीं पड़ेगा, कहीं मूंझना नहीं पड़ेगा, कंफ्यूज स्थिति नहीं आएगी, रुकावट नहीं आएगी। पुरुषार्थ आगे 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 तीव्रता वाला बनता जाएगा। पर तार हमें यह देखना है जुड़ी हुई बाबा के साथ है, निरंतर योगी बनना है। बाबा हमें यह कहते हैं। तो निरंतर योगी माना क्या? आज लौकिक में भी होता है, किसी का किसी के साथ विशेष स्नेह होता, प्यार होता तो नहीं कहते, ये भले सारा दिन कुछ भी करे लेकिन इसको याद ही रहता है, इसका इसके साथ बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। तो प्यारा व्यक्ति तो कभी भूलता ही नहीं है ना। वैसे थोड़ी कोई बैठ करके ही हम सारा दिन याद करें, चलते फिरते उठते बैठते बाबा की याद में ही हमें बुद्धि का तार जोड़ करके रखना है। ये तीव्रता वाला पुरुषार्थ करना है, जिसे कहते सहज योगी, राज योगी, सहज योगी। बाबा का योग ही ऐसा बाबा ने हमें सिखाया कि अपना बच्चा बनाकर अपने साथ प्यार संबंध ऐसा जोड़ दिया कि भूल ही नहीं सकते। आज दादी को जिसने नजदीक से देखा, दादी को कोई भूल सकता है क्या? जो जितना जिसके नजदीक रहता उसको भूल ही नहीं सकता। तो ऐसे ही बाबा के साथ हमारा इतना गहरा संबंध हम जोड़ लें, इतनी अनुभूति कर लें कि वो अनुभव हमें खींचता रहे, उसमें अंतर ना आए। तो इसलिए योग में भी हमें तीव्रता लानी है। और धारणाएं, बाबा ने हमारी धारणाएं इतनी पक्की बनवाई हैं क्योंकि हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य क्या है, देवता बनना, इतना ऊंचा लक्ष्य है। तो सोचो हमारी धारणाएं कैसी होनी चाहिए, हमें एकदम मनुष्य से देवता बनना है। तो अभी हम कौन हुए, होवनहार देवी देवताएं हैं ना, तो हमारी चाल चलन धारणाएं कैसी होनी चाहिए, वैसी हमें बनानी है। ऐसे ही केवल नियम हमने धारण कर लिए, अन्न का परहेज करना है, पवित्रता का परहेज पालन करते हुए चलना है, लेकिन बाबा ने कितनी गहराई पवित्रता की बताई, कितनी हर प्रकार की शुद्धता बताई। हम जब परम धाम से नीचे आए थे तब हम आत्मा कितनी प्योर थी, कितनी शुद्ध थी, कितनी पवित्र थी, वैसा ही बनकर जाना है ना हमें। इतनी धारणा इतनी पक्की रखनी, और ये हमेशा याद रखना है, ये मनुष्य से देवता बनाने वाला विद्यालय, हमें देवता बनना है। तो देवी देवताएं कैसे होते हैं, सदा मुस्कुराते रहते, और इसमें हम सर्व दादियां हमारे सामने हैं, उनको देखते हैं। आज आपने देखा होगा निर्मल शांता दादी सदा मुस्कुराती रहती है, आज बाबा आता है गुलजार दादी के तन में, उनके जैसा मुस्कुराना तो किसी को आ ही नहीं सकता। जब हमारा माइंड डिस्टर्ब हो, जरा भी कोई डिस्टर्बेंस आए, बाबा का वो मुस्कुराता चेहरा देख लो, आपके अंदर मुस्कुराहट आ जाएगी। बाबा कैसे मुस्कुराते हैं, निर्मल शांता दादी देखो मुस्कुराती रहती, गुलजार दादी देखो हमारी शांति की देवी, एकदम शांत, सबको आशीर्वाद की देते हुए आगे शांत स्थिति में रहने वाले। रतन मोहिनी दादी देखो, सदैव रत्नों को हमारे सामने लुटाने के लिए, हम बच्चों की सेवा के लिए हाजिर है वरेडी आत्मा। कितनी ना हम दादियों की विशेषताओं को, उनकी झलक को, उनके व्यवहार को, उनके संग में रह करके आनंद परमानंद की अनुभूति को जरा गहराई से अनुभव करें कि दादी के संग बैठने में, दादी की क्लास में बैठने में कितनी आनंद परमानंद की अनुभूति होती है। तो ये सब क्या है? तीव्रता वाला पुरुषार्थ। इन सब चीजों से हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता आ जाती है। इसीलिए तो मधुबन दौड़ दौड़ के आते हैं। कैसे आते हैं? स्नेह प्यार के विमान में दौड़कर आते हैं, उड़कर आते हैं। अब तो घर घर में टीवी में भी देख लेते हैं ना, सेंटरों पर मिल लेते हैं ना बाबा से, फिर भी मधुबन आते हैं। क्योंकि संग दादियों का मिलता है, उतनी आनंद परमानंद की अनुभूति होती है, वातावरण हमें मिलता है, उससे शक्ति आती है, वो सब शक्ति को अपने अंदर भरकर हम ले जाते हैं। तो धारणाएं, उस धारणाओं में हमें तीव्रता लाने के लिए, हर एक के गुणों को, धारणाओं को, व्यवहार को, उन सब को हमें देखकर अपने अंदर अपनाते हुए आगे आगे बढ़ते जाना है। उसके बाद सेवा। सेवा के लिए तो बाबा स्वयं कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं। सेवा तो मेवा खिलाती है। कई बाबा के बच्चों को सेवा से इतना प्यार है, सेवा की मेवा यही इतनी खाते हैं, और अनुभव के आधार से वो बाबा के घर भी सेवा करने दौड़ दौड़ के आते हैं। बाबा का बेहद यज्ञ है, बेहद सेवा में आना, दधीची ऋषि के समान अपनी हड्डी हड्डी लगाना, कितनी आत्मा को सुकून मिलता है, कितनी खुशी और एक ईश्वरीय आनंद, ईश्वरीय परमानंद का अनुभव इस सेवा में मिलता है। सेवा बहुत बड़ी मेवा देती है। एक किस्सा याद आता है मुझे कि एक बार राजा अकबर ने 3 प्रश्न सभी से पूछे थे कि सबसे अच्छा, शायद आपको पता होगा, सबसे अच्छा फूल कौन सा, सबसे बड़ा सबसे अच्छा राजा कौन सा, और सबसे अच्छा बेटा कौन सा। सबको मालूम होगा ना ये प्रश्न, मालूम है सभी को? सबसे अच्छा फूल कौन सा? गुलाब का। कोई कहते गुलाब का, कोई कहते चंपा का, कोई कहते कमल का। राजा कौन अच्छा, बेटा कौन अच्छा, सबने अलग अलग बताया। फिर जब बिरबल से पूछा कि भी तुम बताओ सबसे अच्छा फूल कौन सा, तो उसने क्या बताया? सबसे अच्छा फूल तो वैसे फूलों में गुलाबी है, कमली है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि सबसे अच्छा तो कौन सा फूल है, रुई। क्यों? रुई को क्यों कहा? रुई से कपड़े बनाकर के सर्दियों का बचाव होता, वो सेवा करता है। बिना वस्त्र के तो मनुष्य कैसा होगा? और राजा, सबसे बड़ा राजा, सबसे अच्छा राजा इंद्र है, क्योंकि वो वर्षा का देवता है। पानी नहीं होगा, खेतों में पानी नहीं जाएगा, अनाज नहीं होगा तो खाएंगे क्या, सेवा कैसे होगी? वो सेवा करता है। और तीसरा, सबसे अच्छा बेटा कौन सा, तो क्या बताया? मालूम होगा सभी को, सबसे अच्छा बेटा गाय का बेटा। क्यों? क्योंकि वो हल जोतने लायक बनता है, उससे खेती होती है, अनाज उत्पन्न होता है, और वो किसी से सेवा भी नहीं लेता, अपनी ही मेहनत के जो घास फूस निकलता है उसको खाकर अपना निर्वाह करके दूसरों की सेवा के लिए तैयार रहता है। तो कहने का मतलब इस किस्से का सार क्या निकला कि सेवा करने वाला सबसे बड़ा, सबसे अच्छा। और बाबा भी सबसे ज्यादा प्यार किसको करते, सबसे ज्यादा याद किसको करते? सर्विस एबल बच्चों को, सेवा करने वाले बच्चों को, है ना, सेवा की मेवा तो मिलती ही मिलती है। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही सब्जेक्ट में हमें तीव्रता लानी है। कई एक बार मधु बनाए, एक बार सेवा में, अगले साल सोचेंगे नहीं आएंगे। अरे ड्रामा में नूंद करते जाओ, जो आपने अभी शूटिंग का समय चल रहा है, आप शूट करते जाएंगे, कल्प कल्पांतर के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए हो जाएगा। तो नूंद करनी है हमें। कईयों को लगता है कि हम तो नूंद कर रहे हैं, ड्रामा में फिक्स कर रहे हैं, तो हम बार बार बाबा के घर आते रहे, सेवा करते रहे। ये तन को निरोगी कैसे बनाएंगे? कंचन काया निरोगी काया, सेवा से ही तो हम बनाते हैं ना। तो बाबा के घर सेवा में हर प्रकार की सहूलियत भी मिलती, उतना प्यार भी मिलता, उतनी दुआएं भी मिलती, सब कुछ मिलता है ना। फिर सेवा करते हैं तो और आनंद आ जाता है। सेवा की मेवा भी साथ साथ खाते रहते और सेवा भी करते रहते, मौज आनंद की अनुभूति करते हुए खेल खेल में सेवा करते हैं, है ना, ऐसा मजा आता है ना सभी को। तो ऐसी सेवा बाबा के घर साल में एक बार मिलती है। तो चारों ही प्रकार से, चारों ही सब्जेक्ट से हमें पुरुषार्थ में तीव्रता लाते हुए आगे तीव्र पुरुषार्थी बनना है। बाकी बाबा के बच्चे तो स्नेही बच्चे हैं, पांच प्रकार के बच्चे हैं, स्नेही, सहयोगी, योगी, प्रयोगी, उपयोगी। हमें इतना अपने आप को तीव्रता वाला पुरुषार्थ में ले आना है कि हम औरों के लिए उपयोगी बन जाएं। देखने मात्र से ही लोगों को प्रेरणा आ जाए कि हमें भी इनके समान अपने जीवन को बनाना है। तो स्नेही भी बने, पांचों ही बच्चों की पांचों ही क्वालिटी एक में आ जाए, ऐसी तीव्रता वाला पुरुषार्थ करना है। हम स्नेही भी रहे, हम बाबा के सहयोगी भी रहे, हम योगी भी रहे, प्रयोग भी करते रहे और उपयोगी भी हो जाए। एक और बात, हमें तीव्रता पुरुषार्थ में लानी है तो हम पांच पी को याद रखें। पांच पी माना कौन कौन सी? पैसा, प्यार, पावर, प्रतिष्ठा और पुण्य। पांच बातों को याद रखें इस ज्ञान मार्ग में चलने के लिए। पैसा, जितना हम धन बाबा के कार्य में, ईश्वरी सेवा में सफल करते हैं, बाबा क्या कहते हैं, किनकी दबी रहे की धूल में, किनकी राजा खाए। लेकिन सफल किनकी होगी? जो ईश्वर अर्थ लगाए। और हम बच्चों का धन भी हम व्यर्थ नहीं जाने देते। बाबा ने इतनी समझ दी है ना, दुनिया में धनवान भी बहुत है, गरीब भी बहुत है, लेकिन गरीबों का भी बहुत कम होते हुए भी व्यर्थ जाता है, साहूकारों के पास बहुत होते हुए भी व्यर्थ जाते हैं, और हम बच्चे थोड़े में भी थोड़ा करते हुए, सफल करते हुए कितना युक्ति से चलते हैं, ये बाबा के बच्चे सभी जानते हैं कि हम ईश्वरी कार्य में सफल करके धन को आगे की जन्म के लिए कैसे अपने जीवन में माला माल प्रलब्ध अपनी की जन्म तक की बना लेते हैं। पैसे से मोह नहीं रखते, लेकिन आगे की जन्म की जो प्रलब्ध बनानी है वो स्मृति में रखते हुए चलते हैं, क्योंकि खेल है स्मृति और विस्मृति का। जो जो जितनी जितनी स्मृतियों को आप ताजी करते रहेंगे, अच्छी अच्छी सकारात्मक आगे बढ़ाने वाली तीव्रता वाली, उतनी आपके अंदर समर्थी आती जाएगी। और प्यार, पैसा प्यार, बाबा जैसा प्यार, बाबा के घर जैसा प्यार, बाबा की समान बनी हुई बाप समान दादियों का निस्वार्थ प्यार, वो हमें दुनिया में कहीं ऐसा देखने नहीं मिलेगा। और वो प्यार जिसके लिए हम सुनते आए कि प्यार से पत्थर भी पिघल जाता है, वो प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं। बाबा के घर कैसी कैसी आत्माएं आती हैं, लेकिन वो ज्ञान में आने के बाद ज्ञान में आने के बाद भी, मधुबन आने के बाद, यहां वो और भी बिल्कुल प्यार में पिघल करके पानी पानी होकर जाती है। हमने देख लिया, हमने पहचान लिया, हमारा इतना बड़ा परिवार, देहद का परिवार, इतना बड़ा ईश्वरी परिवार, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। इतना प्यारा बाबा, इतनी प्यारी हमारी दादियां, हमारे लिए इतना टाइम देती हैं, इतना समय देती हैं, हमें बैठ के इतने प्यार से सौगात देती हैं। देखो सौगात के नाम से सबके कितने चेहरे खिल जाते हैं। ये भी हमारी मुन्नी दीदी जी की कमाल है, कितना प्यार से हमें वो सौगात देने के लिए स्वयं चल करके आती हैं, कितनी मेहनत करती हैं। सभी जानते हैं ना मुन्नी दीदी को, हाँ, कितना प्यार से हमें सौगात देती हैं। हमने देखा सौगात लेकर सब कितना गदगद हो जाते हैं। हाँ, देती है मुन्नी दीदी, याद कौन आता है? बाबा की मुन्नी दीदी, बाबा, बाबा के घर से सौगात मिली, बाबा ने सौगात दी। क्यों मुन्नी दीदी याद क्यों नहीं आती? क्योंकि मुन्नी दीदी के दिल में कौन बैठा है? बाबा। आप भी याद आए सौगात उनने दी तो भी क्यों दी? बाबा के बच्चे आए, बाबा के बच्चों को दूंगी, बाबा के बच्चों को सौगात देनी है, है? तो आपकी बुद्धि में क्या आया? बाबा ने सौगात दी, बाबा के घर से सौगात मिली। कितनी गदगद हो जाते हैं सब, कि ये पहचान मिली, ये खुशी मिली, उसको ओढ़ कर और पुरुषार्थ में तीव्रता आ जाती है। आती है कि नहीं? हमने देखा सौगात मिली, शाल ओढ़ी और दौड़ दौड़ के पुरुषार्थ में क्लास में जाते हैं। बहुत सुंदर दृश्य दिखता है। ये हमारी बड़ी दादी थी, उन्होंने ऐसी व्हाइट शाल, सफेद शाल सबको दी ताकि सब फरिश्ते, होली हंस नजर आए, क्योंकि हमारी दादी जी को रंग बिरंगी ये अच्छा नहीं लगता था, तो सफेद शाल का सौगात का सिस्टम बनाया, तो सब होली हंस नजर आने लगे और सब में खुशी में गदगद होकर पंख लग गए, पुरुषार्थ में तीव्रता आ गई। तो छोटी छोटी सी ऐसे बातों को स्मृति में लाकर हमें पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है, आए समझ में? तो प्यार व्यक्ति को आगे कितना बढ़ा देता है, कितना पुरुषार्थ में तीव्रता ला देता है, आए समझ में? और पावर आ जाती है। जितना हम बाबा को याद करते हैं, जितना अपनी घोट तो नशा चढ़ाते हैं, जितना दादियों के जीवन में, उनके संग में, उनकी क्लास को बार बार पढ़ते हैं यहां से जाने के बाद भी, तो पावर आती है। पावर कैसे आए? आत्मा की बैटरी चार्ज कैसे हो? हम बाबा के बच्चे हैं, ज्ञान में आए हैं, हमें अपने आप को सदैव जागृत अवस्था में रखना चाहिए। सुषुप्त तो कभी नहीं बनना है, सदैव जागती ज्योत हूं मैं, सदैव जागृत रहने वाली आत्मा हूं, मेरी बैटरी कभी डिस्चार्ज नहीं होगी, ऐसे अपनी आत्मिक बैटरी को चार्ज रखकर चलने वाली आत्मा का पुरुषार्थ कैसा होगा? तीव्रता वाला। तो पावर भरने में, अपने आप को चार्ज करने में हमें तीव्रता लानी है, उसमें भी तीव्र, और तभी हमारी प्रतिष्ठा बनेगी, और तभी हमारे से पाप कर्म, विकर्म और ये व्यर्थता, इन सब से हम दूर हो जाएंगे और पुण्य कर्म होने लगेंगे, पुण्य आत्मा बनेंगे। तो पाप कर्म, विकर्म कैसे बनते हैं? अनजान में भी कई बार बन जाते हैं। हम इतना समय बर्बाद कर देते हैं, हमें पता ही नहीं पड़ता कि आज हमने सारा दिन क्या किया। अगर हम ध्यान दें तो मालूम पड़ेगा हमने कितना समय व्यर्थ कर दिया, हमने अपनी कितनी बोलने में एनर्जी, शक्ति बहा दी, और अगर हम अटेंशन देते तो हम कितने पुण्य आत्मा बन जाते, व्यर्थता को समाप्त कर देते। तो पांच बातें, पांच पी याद रखो, पैसा, प्यार, पावर, प्रतिष्ठा और पुण्य। अभी ही हमें पुण्य आत्मा बनना है, फिर तो 21 जन्म पुण्य का फल खाते ही रहेंगे। भले हम मायावी दुनिया में हैं, इस माया का राज्य है, अभी हमारा राज्य नहीं है, लेकिन हमें माया जीत सो जगत जीत बनना है। दूसरी बात ज्वालामुखी की बात है। तो ज्वालामुखी याद क्या होती है, ज्वालामुखी योग माना क्या है, किसको कहते हैं ज्वालामुखी योग? पहले हम उसकी गुह्यता को समझ लें कि ज्वालामुखी माना क्या। एक मीरा थी, मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, उसी की लगन में मगन, सर्व लोक लाज कुल की मर्यादाएं उसने तोड़ करके एक मेरा गिरधर गोपाल को अपनाया था, इतनी वो लगन में मगन थी। तो उसी प्रकार ज्वालामुखी योग माना क्या, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, बस एक की ही लगन में मगन रहते रहते योग की अगन जलाना, यही ज्वालामुखी अगन है, योग है। उसमें हमारे विकर्म विकार सब भस्म हो जाते हैं। तो उसमें भी एक होता है ज्वालामुखी भी, एक अंतर अंदरूनी होते हैं, एक ओपन होते हैं और एक पूरे दिखाई परिवर्तित करने वाले होते हैं। जैसे देखो, आपने देखा होगा एक एक पुताई का एक चूना होता है, चूना आपने घर में भी आप लाते होंगे पुताई के लिए, तो उसमें भी तीन प्रकार का चूना आता है। एक चूना जो बारीक लेकर आते हैं आप, पानी में डालेंगे तो वो घुल जाता है, उसमें कई पत्थर भी निकलते हैं, ये भी होता है। और दूसरा प्रकार वो आप पसंद नहीं करते, दूसरा चूना आप लाते हैं उसको आप पानी में डालेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा धधकता है ना, वो भी चूरा हो जाता है, उससे आप पुताई करेंगे लेकिन फिर भी वो सफेद नहीं होता है, कुछ मेला मठमेला सा होता है, उसको भी आप पसंद नहीं करते। तीसरे प्रकार का चूना आता है जिसको आप भले बड़े बड़े डल्ले उठा करके लाएंगे, उसको अगर आपने पानी में डाल दिया तो भी वो जोर जोर से धधक कर इतना तेज धधकते हैं कि वो बाहर आ जाती है, उफान आ जाता है, बाहर फैल जाते हैं, होता है ना ऐसा, देखा ना, फैल जाते हैं। तो उसी प्रकार योग में भी तीन प्रकार के बच्चे होते हैं। योग तो सब लगाते हैं, तो जो पहले प्रकार के योगी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पुरुषार्थ वो भी योग का करते हैं। योग का पहला पुरुषार्थ है देह भान, देह अभिमान को छोड़कर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर फिर परमात्मा की याद में बैठना, तो वो उसका पुरुषार्थ भी करते हैं और प्लान बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते रहते हैं पुरुषार्थ के, उसी में उनका टाइम ज्यादा जाता है। प्रोग्राम मिले तो योग करें, प्लान बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, एक प्रकार के योगी बहुत पुरुषार्थ करके योग लगाते हैं और फिर भी उनका देह भान खत्म नहीं हो पाता। और दूसरे प्रकार के जो योगी हैं वो देह अभिमान के आवरण को तो तोड़ देते हैं, योग युक्त स्थिति को ले आते हैं, अनुभव भी करने लगते हैं, लेकिन वो अपने तक सीमित रहते हैं। जैसे वो दूसरी प्रकार का चूना बताया, पुताई तो उससे हो जाएगी लेकिन वो अपने तक, माना नजदीक जाओ तो लगेगा कि हाँ पुताई हुई है, वो दूर से आकर्षित करने वाली नहीं होगी। और जो तीसरे प्रकार की जो बताई, धधक कर चूना बाहर आ जाता है, उससे अगर आप पुताई करेंगे तो एकदम सफेद आकर्षित करने वाली होगी। तो ऐसे ही जो तीसरे प्रकार के योगी हैं, वो योगी योग लगाने से शक्तिशाली बनते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञानी और योगी ज्ञान के मनन चिंतन के आधार से अपने अंदर एकाग्रता लाते हुए योगी बने ना। योग माना क्या? एकाग्रता ही योगी है ना। योगी कैसे बैठता है योग में? एकाग्रता से। तो मन एकाग्र होना चाहिए, केवल शरीर की एकाग्रता नहीं कि हम अपना आसन में स्थित होकर एकाग्र होकर बैठ गए, लेकिन शरीर को भी एकाग्र करना है, मन को भी, बुद्धि को भी, संस्कार को भी, सबको एकाग्र करके एक लाइन में करके फिर हम स्थित होकर के बैठते हैं। ऐसा योगी बनकर हमें बैठना है। तो उससे हमारे अंदर इतनी शक्ति आती है, योग से पावर आती है कि उस योगी की शक्तिशाली स्थिति हो जाती और वो अपनी शक्तिशाली स्थिति होने के कारण, शक्ति संपन्न होने के कारण वो नम्र चित्त भी होता है। उसके अंदर महसूस तक की शक्ति वो अपने अंदर महसूस करते हुए साथ में परिवर्तन करते हुए वो आगे बढ़ता है, क्योंकि व्यक्ति अपने स्व परिवर्तन के आधार से पुरुषार्थ में तीव्रता तभी ला सकता है जब पहले उसके अंदर महसूसता की शक्ति। आज आप किसी व्यक्ति को कहो आपके अंदर ये कमी है, ये गलती है, ये बात नहीं होनी चाहिए, वो सुन लेगा नहीं करेगा? फिर उसे आप कहेंगे अरे हमने कहा था आपने नहीं सुना, फिर सुन लिया फिर नहीं किया, उसके अंदर परिवर्तन ही नहीं आता है। और आप उसे बिठाकर प्यार से भी शिक्षा देंगे ना तो भी उसके अंदर परिवर्तन नहीं आता। पर आएगा कब? जब वो उस बात को महसूस करेगा कि जो सामने वाला मुझे कह रहा है बिल्कुल राइट है, मेरे भले के लिए कह रहा है, मैं उसको देखूं तो सही क्यों कह रहा है। अगर वो उस बात को, उस गलती को अपने अंदर महसूस करेगा तो परिवर्तन करेगा ना। सामने वाला भले कुछ भी कहे, लेकिन जब खुद महसूस नहीं करेंगे कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, ये कमजोरी है, ये मेरी भूल है, तब तक परिवर्तन नहीं होता। और जब तक हम स्व परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हम विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी कैसे बनेंगे? स्व परिवर्तक ही विश्व परिवर्तक होगा, शुभ चिंतक ही औरों के लिए शुभ चिंतक बन सकेगा। शुभ चिंतक तो बनना है लेकिन पहले खुद का, शुभ चिंतन में तो रहना है पहले खुद के शुभ चिंतन में, कि मुझे खुद की उन्नति करके, खुद की कमी कमजोरियों को खत्म करके ऐसा बाबा का प्यारा सिकिलदा लाडला बच्चा बनना है। खुद के प्रति शुभ चिंतन, शुभ चिंतक का भाव लाते हुए ऑटोमेटिकली फिर दूसरों के लिए भी, क्योंकि संस्कार बन गया ना, उनके लिए भी हम शुभ चिंतन और शुभ चिंतक की विधि को अपनाते हुए पुरुषार्थ में तीव्रता लाते हुए ऐसे शुभ चिंतक योगी बनेंगे जो ज्वालामुखी योग की अवस्था हो जाएगी। आज हम देखते हैं प्यारा बाबा गुलजार दादी के तन में आते हैं, उस समय कितनी भी साधारण अवस्था वाली आत्मा होती है बैठी हुई सभा में तो भी उसकी ज्वालामुखी स्थिति नहीं हो जाती। वही तो ज्वालामुखी योग है, और क्या है? वो प्रेम, वो आनंद, वो खुशी की अनुभूति उस साधारण स्थिति वाले योगी की भी स्थिति बन जाती है, अनुभूति हो जाती है। इतनी बाबा की पावर, क्योंकि वातावरण, बाबा की शक्ति, बाबा का पावर जो सबको अनुभव में ले लेता है, सब ज्वालामुखी योगी हो जाते। वही तो ज्वालामुखी योग है, जो एकदम हम प्यार में खो जाए, मगन हो जाए, वो ज्वालामुखी योग। तो चलते फिरते बस हमारी तार जुड़ी रहे, लगन की अगन लगी रहे, तो तो अगन जितनी हम तेज करेंगे उतना हमारे जन्म जन्मांतर के जो विकर्म है, पाप कर्म है, 63 जन्मों का बोझा है, वो सारा उस अगन के अंदर हम भस्म कर सकेंगे। तो इसलिए ज्वालामुखी योग शब्द से हम भारी ना करें अपने आप को, ये ना कहें कि हमें नहीं आता या हम नहीं जानते, उसकी गुह्यता को हम समझें और उस रीति से, क्योंकि ज्ञान हमें हर प्रकार की समझ देता है। जैसे आज देखो किसी को कोई कार्य कहा जाता है, ज्ञानी योगी समझदार होगा तो उसको वो कैच करके और तुरंत प्रैक्टिकल में कर लेता है। और कईयों से आप देखेंगे कोई कार्य देंगे ना, वो जिम्मेवारी से नहीं करता। ऐसा नहीं वो करना नहीं जानता है वो, या वो नहीं करना चाहता, ऐसा भी नहीं है, लेकिन जिम्मेवारी लेते हुए भी वो जिम्मेवारी नहीं निभा पाता। उसका कारण क्या है कि कभी कभी कोई बात कही जाती है उसको वो पहले समझता ही नहीं है। कोई कार्य कहा जा रहा है, कोई काम बताया जा रहा है, अगर हम उसको समझ लें अच्छी तरह से उसके बाद स्टार्ट करें तो क्या होगा, एक्यूरेट होगा। नहीं तो कई बार कहते ना, हाँ ये गलती हो गई क्योंकि हमने समझा ही नहीं था ना, हमको ये समझ में ही नहीं आया था। अच्छा, समझ में नहीं आया था तो हमें क्या करना था, फिर से डबल समझना चाहिए था ना कि भाई हमको ये बात समझ में नहीं आई, हमें समझा दो, है ना। तो तीव्रता पुरुषार्थ में तीव्रता माला क्या, जैसे कोई कार्य भी हमें करना है और फटाफट करना है तो उसमें भी तीव्रता लाने के लिए उस कार्य को पहले हमें अच्छी तरह से समझना होगा, उसमें टाइम देना होगा, फिर तो हम फटाफट कर लेंगे। और जब बात समझ में नहीं आई, गणित का फार्मूला आया ही नहीं तो करेंगे कैसे, जिसको फार्मूला आ गया वो फटाफट कर लेगा, है ना। तो हम बच्चों को तो बाबा ने विधि की सिद्धियां सिखाई है, विधि की सिद्धि है। दुनिया में रिद्धि सिद्धि चमत्कार है और यहाँ हम बाबा के बच्चे विधि पूर्वक अपने जीवन को जीते हैं, तो इसलिए विधि के द्वारा विधि पूर्वक चलते हुए फिर हम सिद्धि को प्राप्त करते हुए सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के साथ साथ सर्व शक्तियों को अपने अंदर भरते हुए और अपने आप को शक्तिशाली बनाते चलते हैं। पर बस विधियां हमें आनी चाहिए, योग की विधि क्या है, ज्ञान में चलने की विधि क्या है, बाबा को याद करने की सही विधि क्या है, किस रीति से किस विधि से हमें चलना है। जैसे नहीं कहते हैं कि प्रभु के साथ प्रीत करना सहज है लेकिन प्रीत की रीत निभाना वो कठिन है, है ना। तो प्रीत तो कर ली हमने लेकिन निभाना आना चाहिए। जैसे लौकिक परिवार में भी तो कहते हैं ना, संबंधी हैं हमारे लेकिन होते हुए भी हम उनसे कोई संबंध नहीं है, तो ये क्या बात भैया, संबंधी भी हैं पर उनसे कोई संबंध नहीं है, ये क्या हुआ। संबंधी हैं, हाँ संबंधी हैं पर उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो उसका कारण क्या है कि निभा करके चलना नहीं आता है। अगर हमें निभाना आए किसके साथ कैसे चलना है तो वो बाबा ने हमें सिखाया है। अच्छा।